بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہماری نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع تہران میں جاری عالمی دہشت گردی کی کانفرنس ہے, اور اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیوز میں گفتگو کے لیے تشریف فرما ہے جناب ناصر عباس شیرازی صاحب. آپ مرکزی کابینہ کا حصہ ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ اس کانفرنس میں تقریباً 60 ممالک کی نمائندگی ہے, اور 3 جو اہم ممالک ہیں اس خطے کے, پاکستان, افغانستان اور ایران, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا, اور اس میں ایران نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور اس انیشیٹو کے تحت ایران کی کامیاب ڈپلومیسی کے نتیجے میں دنیا کے 60 کنٹریز سے, جیسا آپ نے خود بتایا, نمائندگان یہاں پر آ رہے ہیں, جن میں سے ایک تعداد سربراہان مملکت کی بھی ہے, جبکہ باقی فارن منسٹرز اور ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کامیاب ڈپلومیسی کی ایک مثال اور ایک تسلسل ہے کانفرنسز کا, جس کے ذریعے ایران حقیقی موقف کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتا رہتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے نیوکلیئر ایشو پر تہران میں 2 کانفرنسز ہو چکی ہیں, مثالی کانفرنسز تھیں. ایسی ہی سی ایک یہ مثال جو کرنٹ ایشوز پر دنیا کو حقیقی موقف دینے کے لیے ایران نے ارینج کی ہے, ایک بڑی اپریشیٹیبل ایفرٹ ہے. اس کی بہت زیادہ تائید بھی کی جانی چاہیے, اور بڑی یہ بر وقت ہے اس لیے کہ خطے کے موجودہ حالات کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ڈیولپمنٹس اس کانفرنس کے نتیجے میں صحیح رخ اپنا سکتی ہیں.
خطے کے 3 اہم ممالک, پاکستان, ایران اور افغانستان, جو دہشت گردی کا خود بھی شکار ہیں, وہ اس میں شامل ہیں, بلکہ ان کے سربراہان اس میں شامل ہوئے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
دیکھیں, یہ بہت اہم ہے کہ اس وقت خطے میں بعض ڈرامائی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, یا کم از کم ان تبدیلیوں کے حوالے سے ایک ڈیڈ لائن آ چکی ہے, اور اگر ہم یہ 100% تبدیلیاں نہ کہیں تب بھی بڑی حد تک یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں. یقیناً اسامہ کی ڈیتھ کے بعد امریکہ کا افغانستان سے انخلا کا ٹائم فریم یہ بھی آ پہنچا ہے, اور جیسا کہ ہم پہلے ایک پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ دونوں کو ریلیٹڈ ہیں, کہ وہ اپنی اس شکست کو کہ جو خطے میں انہیں ہوئی ہے اس کو فتح میں بدلنے کے لیے یا ایک امپیکٹ دینے کے لیے کہ ہم نے ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے جاتے ہوئے, وہ اپنا اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے انہوں نے اسامہ والا وہ ایونٹ کیا تھا. لیکن یقیناً وہ اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے اس نقاب کو اتار نہیں سکیں گے, اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا در حقیقت خطے میں امریکہ کی بہت بڑی شکست ہی گنی جائے گی. پہلے میں یہ عرض کروں کہ امریکہ, اگر ہم دنیا میں دو طرز کی جنگیں, ایک رسمی جنگ اور ایک غیر رسمی جنگ لڑی جاتی ہیں. رسمی جنگ میں امریکہ افغانستان کے اندر بھی شکست کھا چکا ہے اور عراق کے اندر بھی شکست کھا چکا ہے, لیکن امریکہ پورے طور پہ یہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی اس شکست کو غیر رسمی جنگ یا نفسیاتی جنگ کے ذریعے پوری دنیا میں فتح میں بدلنے کی کوشش کرے, یا پوری دنیا کو یہ تاثر دے کہ وہ خود یہاں سے نکل رہا ہے, نہ یہ کہ اسے جبر کے ذریعے نکالا جا رہا ہے, نہ یہ کہ وہاں کے حالات نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس خطے کے اندر اپنا اسٹے پرولانگ نہیں کر سکتا. الحمدللہ ایران کا یہ والا پروگرام دراصل اس کی نفسیاتی جنگ کو بھی شکست میں بدلنے کے لیے ہے, کہ پوری دنیا کے میں وہ جو پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم خود اس خطے سے انخلا کر رہے ہیں اور خطے کی تقدیر کا فیصلہ ہم کریں گے, اور خطے میں جو آنے والی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ جیسے ہم چاہیں گے بنیں گے, یہ کانفرنس یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نہیں, بلکہ خطے کے ممالک یہ فیصلہ کریں گے, وہاں کے عوام یہ فیصلہ کریں گے, اور وہاں کی حقیقی طاقتیں یہ فیصلہ کریں گی, کوئی مسلط کردہ قوت یہ فیصلہ نہیں کرے گی. اس لحاظ سے پاکستان کا, ایران کا اور افغانستان کا کانفرنس سے ایک دن پہلے مل بیٹھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جہاں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ خطے میں فارن انوالومنٹ کی بجائے خطے کے معاملات کو خود حل کرنا چاہتے ہیں, وہاں یہ ایک نیچرل پروسیس کا آغاز بھی ہے. اگر آپ غور کریں, پاکستان کا نیچرل ڈیفنس, نیچرل تھریٹ اگر انڈیا والی سائڈ سے ہے, تو انڈیا کے بالکل دوسری طرف اگر پش کا امپیکٹ دیکھنا چاہیں तो वो ईरान की तरफ बनता है।
सही।
और हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस का असूल ये है या स्ट्रेटेजिक स्टडीज का असूल ये है कि आपका जहां बैक होती है अगर उसकी तरफ से आपको कोई पावर मिल रही हो तो फ्रंट से आप स्केप कर सकते हैं और आप एक बड़ी जंग लड़ सकते हैं। इस तनाजर में अगर हम देखें तो इंडिया का जो पुश का इम्पैक्ट है उसकी तरफ बैक पे ईरान आता है, और ईरान का अगर पाकिस्तान को सपोर्ट मिल जाए तो ये एक इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दिफा नाकाबले चैलेंज हो जाता है, ये एक हकीकत है। तीसरा ये कि बिलाकर ये खित्ते की इस्लामी ताकतें हैं, इनके पुराने ट्रेडिशंस हैं, इनके पुराने ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ, इनका कल्चर एक दूसरे से मिलता है, सकाफत मिलती है, फरहंग मिलती है, हत्ता अक्सर इलाकों में जबाने तक जो है वो मिलती हैं। तो इस खित्ते के बेहतरीन जज, बेहतरीन फैसला कौन करने वाले, कि यही ममालिक हैं, और ये फर्स्ट स्टेप है कि वो बगैर किसी आलमी ताकत के अपने मामलात को खुद हल करने के लिए बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इस खित्ते की तारीख मुकद्दर का फैसला करने के लिए एक तारीख साजी बैठे।
अक्सर इस कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब कॉन्फ्रेंस से एक रोज पहले जिस तरह भी आपने फरमाया वो तशरीफ ले गए वहाँ पे, और हमने मीडिया में ये भी देखा है कि सऊदीया की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था पाकिस्तानी हुकूमत पे कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करे, तो उनका दबाव फॉइल करते हुए उनका इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना, क्या ये आप इसे देखते हैं कि ये कोई ऐसा इंडिया है कि पाकिस्तान अब अमरीकी और सऊदी प्रेशर से निकलना चाहता है?
देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के क्लचेस में है, और एक ऐसा पाकिस्तान के जिसके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस अभी शुरू हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो इक्तसादी बहरान का भी शिकार है और तवानाई के बहरान ने पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। पाकिस्तान नेचुरली इस कैफियत से निकलना चाहता है। पाकिस्तान ने अगर आप विकीलीक्स के जो इंकशाफात हैं वो देखें तो पाकिस्तान ने सबसे पहले ईरान ने जैसे ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान के और ईरान की तरफ से ये ऑफर आई कि हम आपको सब्सिडाइज रेट पर पेट्रोलियम फराहम करने के लिए तैयार हैं अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन पाकिस्तान ने वो लेने से अमरीकी दबाव पर इनकार किया, और फिर सऊदी अरब का नाम सामने आया कि सऊदी अरब जो है वो इसको रिप्लेस करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली सऊदी अरब ने इसको रिप्लेस नहीं किया। एक दूसरा ये है कि आप जानते हैं कि किसी भी खित्ते में आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, जब आप एक चीज़ को चेंज नहीं कर सकते तो फिर बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि आप वहाँ अच्छे तरीके से रहने का कोई हुनर सीख लें। फिर ये कि ये एक ऐसा खित्ता, एक पावरफुल और रिसोर्सफुल खित्ता है कि जहाँ अगर हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज को देखना चाहें तो वो कई कुछ चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ईरान के अंदर पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। खित्ते के ये तीन मुल्क मिलकर अगर अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं तो दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट, वो ये मैनेज करने की सलाहियत रखते
हैं।
जो उनकी लोकेशन है उसमें मैं आपको अर्ज करूँ कि मसलन अफगानिस्तान का मसला है, उसे वाटर चाहिए, वार्म वाटर तक रसाई चाहिए, लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसे ईरान और पाकिस्तान हर दो दुनिया से एक्सेस दे सकते हैं। एक पाकिस्तान को तवानाई चाहिए, तवानाई के लिए ईरान तवानाई का दुनिया का तीसरा बड़ा मरकज है और तवानाई प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। अभी आप जानते हैं सदर जरदारी के साथ जो तीन ऑफिशियल्स गए हैं उनमें से एक उनके वजीर पेट्रोलियम हैं आसम हुसैन, एक उनके वजीर हैं तवानाई और एनर्जी के,
और वजीर दाखला भी
हैं, और वजीर दाखला तीसरे हैं। यानी तीन ही इश्यूज हैं कि जो इससे रिलेटेड हैं। वजीर दाखला से रिलेटेड ये खुद कॉन्फ्रेंस है कि जो अमन व अमान के मामलों पर और दहशतगर्दी को कर्ब करने के मामलों पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कैसे करें हम दहशतगर्दी, चूंकि ये सबसे ज़्यादा ये खित्ता शिकार है दहशतगर्दी का, तो कैसे कर्ब करें ये है। लेकिन साथ ही आप ये देखें कि इक्तसादी तावन के इस पहलू को कि पेट्रोलियम के लिए पाकिस्तान ने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को 1150 मेगावाट 1135 मेगावाट के मुआहदे हो चुके हैं, आज हो चुके हैं, और बलूचिस्तान तकरीबन तमाम का तमाम अब कवर हो गया है और उसको तमाम इलेक्ट्रिसिटी इंशाल्लाह ईरान के रास्ते प्रोवाइडेड होगी। आज के अखबारात की जो आप अगर एड देखें तो पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरी ईरान का शुक्रिया अदा किया है कि उसने ये मुआहदा किया, और ये सब्सिडाइज रेट पे है, यानी क्या रेट है, शायद कोई 7 रुपये पर यूनिट है, जो कि अगर आप पाकिस्तान के दीगर उससे कहेंगे जो हम थर्मल और दीगर ज़राए से पैदा करते हैं तो वो मैक्सिमम 29 रुपये तक जा पहुँचता है। तो आप उस लिहाज से भी देखें कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी सपोर्ट है। दूसरा ये कि वो यकीनन तैयार हैं कि पाकिस्तान को पेट्रोल भी प्रोवाइड करें, पाकिस्तान में इस वक्त आप देखते हैं एनर्जी शार्टेज है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। और तीसरा ये है कि वो इसके लिए भी तैयार हैं कि 2014 में पाकिस्तान को जो एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है गैस पाइपलाइन का, वो उस गैस पाइपलाइन को अपनी सरहदों में 1100 किलोमीटर बिछा चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से काम बाकी है, तो इस वक्त टाइम बड़ा कम है और पाकिस्तान ये यकीनन चाहता है, थोड़ा सा उसे ये मौका मिला है कि वो अमरीकी प्रेशर से अपने आप को स्केप करके निकाल के और सऊदी अरब के प्रेशर से अपने आप को निकाल के एक जेन्युइन फ्रेंड की तरफ बढ़ा है। और जेन्युइन फ्रेंड ने आप देखते हैं कि फौरन ही उसका नफ़कत ये कि हाथ पकड़ा है, बल्कि उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है और वो पूरे तौर पे आमादा है कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर तबाही की बुरान जो है खत्म हो जाए। इसी तरह ये एक पहलू था आपके क्वेश्चन का। जो दूसरा पहलू आपने कहा कि क्यों अमेरिका और सऊदी अरब रोक रहे हैं, यह सऊदी अरब का रोल क्या है। सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान के सफारतखाना है सऊदी अरब के अंदर, उसके ज़रिए फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए बाकायदा पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवाया है कि आप ईरान की इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हैं, हम रियाज में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आप उस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दें। लेकिन पाकिस्तान ने एक जेन्युइन डिसीजन लिया है और उसने ये देख लिया है कि उसका दोस्त कौन है और उसका दुश्मन कौन है। और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी से लेकर शमसी एयरबेस के मामला तक, जिसमें अमरीकियों की इन्वॉल्वमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात की इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी दुनिया के सामने आ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं।
बिल्कुल,
अरब जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर खयानतकारी में, पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान की जड़ों को काटने में ये लोग मुलव्वस हैं। ऐसी सूरत में एक नेचुरल अलायंस है जो पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरी ईरान की तरफ बनता है और उसी उस तरफ ही जाना चाहिए। इसमें मैं यार कहता हूँ सऊदी अरब का मनफी रोल, दुनिया के दीगर खितों की तरह ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान में भी बेनकाब होना शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने एक जेन्युइन डिसीजन किया है, एक राइट डिसीजन किया है, राइट टाइम पर डिसीजन किया है और इसके पाकिस्तान के फ्यूचर पर बड़े अच्छे इम्पैक्ट होंगे। अलबत्ता हम सऊदी अरब से किसी दुश्मनी के कायल नहीं हैं, लेकिन सऊदी अरब को पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई मनफी रोल देने के भी कायल नहीं।
शिराजी साहब, अमरीका के सदर ने जिस तरह के अभी आपने भी फरमाया कि वो इस खत्ते से अब खूस अफगानिस्तान से अपनी फौजों का की वापसी का और इनखला का एक रोड मैप दिया उसने, तो इतनी तवील जंग, 10 साल जंग के बाद वो अगर इनखला करते हैं यहाँ से, क्या ये हकीकतन इनखला करेंगे भी या नहीं? और दूसरा ये कि वो क्या हासिल करके जाएंगे यहाँ से?
देखिए, एक चीज़ तो हकीकत है, अमरीकी यहाँ जाने के लिए नहीं है।
सही,
लेकिन वो एक ऐसा अंदाज ज़रूर इख्तियार करना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर इकनॉमिक बर्डन भी कम हो और नफसियाती तौर पर जिस कैफियत में है वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करने की कैपेसिटी में भी नहीं है। उनकी फ़ौजें भी इस कैपेसिटी में नहीं हैं। आप जानते हैं खुद नेटो जो सबसे बड़ा इत्तेहाद है वो एक्सपोज हो गया है लीबिया के अंदर, एक छोटे से कंट्री के अंदर, जो अरब कंट्रीज़ के अंदर आबादी के लिहाज से बहुत छोटा कंट्री, एक्सपोज हो गया वहाँ पर। इतने अरसे के अंदर वो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाए और उनकी तमाम तर प्लानिंग जो है वो भी फेज हो गई और ख़ुद उनके अंदर इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ गए। यही मामला अफगानिस्तान के अंदर भी है। तो अफगानिस्तान को जैसे अभी है इस तरीके से उसको ऑक्यूपाई करना ये आसान काम नहीं है और अमेरिका की इकॉनमी जिस पोजीशन में है वो यकीन इतना बड़ा बर्डन उस तरीके से बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा वो पुल बैक करना चाह रहे हैं। लेकिन वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस को, खराबकारी को, अफगानिस्तान के अंदर के मामलों में अपने दखल अंदाजी को और यहाँ के मामलों को ख़राब करने में जो एक किरदार पहले प्ले करते रहे उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये एक तयशुदा
तरीकाकार क्या होगा?
जाहिर है वो ऑपरेशन की दो किस्में होती हैं, ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशन। तो वो यकीन कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे, ओवर्ट नहीं करेंगे। ओवर्ट ऑपरेशन का टाइम जो है वो गुजर गया है और उन्हें अस्करी मैदान में यकीनन एक शिकस्त हो चुकी है और अस्करी मैदान में शिकस्त है एक ऑर्गेनाइज्ड मुल्क की, दुनिया की सबसे बड़ी फौज की, दुनिया के सबसे बड़े अस्करी अलायंस यानी नाटो की, इतनी बड़ी ताकतों की अफगानिस्तान के अंदर इतना अरसा सर मारने के बावजूद वहाँ इंसर्जेंसी को न रोक सकना, वहाँ पॉपुलर मैसेज की अपराइजिंग को न रोक सकना और आवाम का जारे ताकतों को जो मुतालबा है कि उनको यहाँ से निकलना चाहिए, इस मुतालबे को दबा न सकना, ये दरअसल यकीनन शिकस्त है अमरीकी इस्तेमाल की।
और अब हम
जी करजई को पता है कि फ्यूचर उसका नहीं है, अगर वो फ्यूचर में अमरीका के साथ उसी अलायंस में चलता है तो वो अमेरिका उसको यूज़ कर चुका है जो करना है। लिहाजा करजई यकीनन ये चाह रहा है कि अब वो थोड़ा जेन्युइन पॉलिटिशियंस के तौर पर रोल प्ले करे। उसने जो माजी में किया सो किया, उसकी ये ख्वाहिश है कि खा वो अपने इकतदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए करे, वो ऐसे टेक्निक्स इख्तियार करेगा कि वो अपने इकतदार को प्रोलॉन्ग करे। इस वक्त इकतदार में अमरीका के कंधे पर बैठकर नहीं रहा जा सकता, लिहाजा ये टाइम है और उसने ये टाइमली डिसीजन जो है वो लिया है। अमरीका प्रेशर डालता रहा है लेकिन इसके बावजूद वो इस कॉन्फ्रेंस में भी आए हैं जो ईरान में कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें ये रिस्क करूँ कि अमरीका सिवाय शर्मिंदगी के इस पूरे इलाके से जिल्लत और रुसवाई के और कुछ भी नहीं ले गया। और अभी आप जानते हैं कि इराकी पार्लियामेंट ने भी बाकायदा तौर पर अमरीका को ये कह, अब पार्लियामेंट से तोसीक होना तो बाकी है लेकिन इराकी गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर अमरीका को ये कह दिया है कि 2011 चूंकि उनका इनखला का आखिरी साल है, दिसंबर 2011 में उसे अमरीका को इराक से भी इनखला करना है और उन्होंने वो डेडलाइन पे अपने आप को कारबंद रहने का कहा है और ये कहा है कि इराक की जो गवर्नमेंट और फोर्सेज हैं वो कैपेबल हैं कि वो टेक ओवर करें, वो तमाम तर मामलात को संभालें, लिहाजा इस वक्त हमें किसी और फोर्स की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप हर दो इतराफ़ से देखें कि डेमोक्रेसी आई है, वहाँ प्रो ईरान गवर्नमेंट आई है, वहाँ हकीकी डिप्लोमेटिक हकीकी पावर्स जो हैं डेमोक्रेटिक पावर्स वो आई हैं और दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेटिक पावर जो हैं वो अमरीका की हिमायत याफ्ता नहीं रही। अमरीका कभी भी डेमोक्रेसी की हिमायत नहीं करता, बिलखसूस इस खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, यहाँ तो वो डिक्टेटरों की हिमायत करता है बाकी पूरे इलाकों के अंदर। खुलासा ये है कि अमरीका को इन दोनों खित्तों से अपनी अस्करी जंग शिकस्त और अजीमत के साथ वाइंड अप करनी पड़ रही है और वो आलमी सफारतकारी के मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए, जिसे हम साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, उसके ज़रिए ये तासर देना चाहता है कि वो शिकस्त फाश से दो चार नहीं हुआ बल्कि वो चीज़ों को मैनेज करके पीछे हटा है एक हिकमत अमली के तहत। और इस वक्त ये जो एक स्टेप है ईरान का इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना, दरअसल उसको एक्सपोज करने की बात है कि नहीं, आपको खित्ते से निकलना खुद से नहीं है बल्कि आपको खित्ते की ताकतों ने निकलने पर मजबूर कर दिया है और आपके पास मजीद खेलने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, इस्तेमार की एक बड़ी शिकस्त है। जस्ट इतना ऐड करूं कि जब इस्तेमार वाइंड अप होना शुरू होता, कहते रशिया के बारे में ये कहते हैं कि रशिया जब बढ़ रहा था तो उसके बारे में ये कहा था जिस दिन रशिया का ये बढ़ोतरी रुक जाएगी उस दिन रशिया ख़त्म हो जाएगा, फॉरेन क्रैक्स जो हैं उसके अंदर पड़ने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका के बारे में ये है कि जिस वक्त इसका ये वाइंड अप शुरू होगा फिर ये वाइंड अप जो है ये अनस्टॉपेबल होगा, फिर ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ता जाएगा, ये लपेटता जाएगा और इंशाल्लाह जैसे आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर से उसे अपनी बसात लपेटना पड़ रही है, इराक और अफगानिस्तान के अंदर से उसे अपनी बसात लपेटना पड़ रही है, वो साजिशों और उससे बाज नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल एक जंग का मरला है कि जिसके अंदर उन्हें शिकस्त हो चुकी है और वो उस शिकस्त को अब फेस सेविंग के अंदाज में दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस ने उसको भी एक्सपोज कर दिया।
इस कॉन्फ्रेंस के खत्ते में और आलमी सतह पर आप क्या असरात देखते हैं?
देखिए बहुत अहम है, एक के अमेरिका, उनका यूरोपीय यूनियन का ब्लॉक और तमाम अरब कंट्रीज़ जो बिलखसूस यूएई और इनके जीसीसी कंट्रीज़ जिन्हें आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, ये भरपूर तरीके से निकले हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाएं। लेकिन इसके बावजूद 60 कंट्रीज से शिरकत, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि ईरान ने उनकी एफर्ट्स को नाकाम बनाया है और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करके साबित कर दिया है कि ईरान को वो डिप्लोमेसी के महाज पर शिकस्त नहीं दे सके। एक दूसरी बात यह है कि रहबरे मौज़म आयतुल्ला मौज़म सैयद अली खामनेई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस के नाम अपना पैगाम भेजा है आज,
अच्छा,
जो आज पढ़कर वहाँ सुनाया गया है। उसमें उन्होंने ये कहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर जो काम हो रहा है वो बड़ी जंग जो लड़ी जा रही है वो नफसियाती जंग है, अस्करी जंग नहीं है, और नफसियाती जंग कई पहलुओं से लड़ी जा रही है जिनमें से एक बड़ा पहलू मसलन ईरान ने एक्सपोज किया वो ये कि इससे पहले कॉन्फ्रेंस थी कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर ये सब के लिए होनी चाहिए लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया को, या तो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से पाक कर दिया जाए और पूरी दुनिया को न्यूक्लियर पावर का हक दे दिया जाए, ये उन्होंने स्लोगन दिया और उस स्लोगन के तहत उन्होंने पूरी दुनिया से अट्रैक्शन ली और दुनिया को एक नई जेहद दिखाई। एक जेहद क्या है कि वो कहते हैं कि हमारे पास, हम पावर्स हैं और ये पावर हमारे पास ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक मुल्क का मौकफ है जो दुनिया के मजलूम कंट्रीज़ की आवाज़ है, मजलूमीन की आवाज़ है, पिसे हुए तबकात की आवाज़ है, जो कह रहा है कि नहीं, न्यूक्लियर पावर सबके लिए होनी चाहिए लेकिन न्यूक्लियर वेपन से हम पूरी दुनिया को फ्री करना चाहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत, यानी एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर जिसमें न्यूक्लियर वेपन ना हो, ये कितना खूबसूरत है। एक बात, यानी फितरत से करीब तर मौकफ और हकीकी मौकफ देना और उस नफसियाती जंग का तोड़ करना बड़ा अहम है। अभी भी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि टेररिज्म कहाँ है और टेररिस्ट कौन है, क्या इसे एक्सपोज करना, कि क्या इसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है? या आप दूसरी बात देखें कि इस वक्त वो कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा हो गया है, क्या ये दुरुस्त है कि एक्सट्रीमिज्म मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर है? जस्ट इस सवाल को उनके ऊपर उठाने की ज़रूरत है और ईरान ये काम कर रहा है कि भाई आप हमसे पूछते हो, आप खुद क्यों जवाब नहीं देते कि एक्सट्रीमिज़म का असल मरकज़ तो आप हैं। मसलन किसी दुनिया के मुस्लिम कंट्री के अंदर तौरात, ज़बूर या इंजील जलाने का वाक़या हुआ?
नहीं
लेकिन क्या वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर कुरान जलाने के वाकयात नहीं हुए? क्या किसी इस्लामिक कंट्री ने किसी और मजहब के रहनुमा, ख्वाब उनके पैम्बर हों या मसलन दिगर रहनुमा हों, उसकी इस तरह तजहीक और कार्टून बनाए हैं? किसी एक मुस्लिम कंट्री ने, ख्वाब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ख्वाब डेवलप कंट्री है, नहीं बनाए, लेकिन इनकी सोसाइटी ने ऐसा किया है, इनके मीडिया ने उसको प्रमोट किया है। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीमिज्म तो उधर है। अब ये उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया है कि ये सारी सवालात हमारे ऊपर रखें और हम ही जवाब दे के अपने आप को पेश करते रहें, नहीं सफाइयां देते रहें। ये पहला मौका है कि ईरान ने इस सारी कैफियत को डाइवर्ट करके सवाल उनके ऊपर खड़ा कर दिया। और रहबर ने जो सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा है कि वेस्ट ने इस टेररिज्म को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इन्वेजन के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर कब्जे के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के मामलात के इस्तेसाल करने के लिए। और ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर इस वक्त ईरान खड़ा होकर पूरी दुनिया को बताना चाहता है, कहाँ थे वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जिसका नाम लेकर ये इराक के अंदर आए?
बिल्कुल।
और कहाँ वो डेमोक्रेसी थी जिसको ये अफगानिस्तान के अंदर लाना चाह रहे थे? और आज आप देखते हैं कि शुरू में उन्होंने अपने खुद साख्ता डेमोक्रेसी वहाँ डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन अब इंशाल्लाह फ्यूचर में नतीजा कंपैरेटिवली बेहतर होगा। फिर आप देखें कि क्या इस खित्ते के अंदर अमेरिका के आने से पहले खुदकुश हमले थे? क्या इस खित्ते के अंदर अमेरिका के आने से पहले इस तरह की फिरका वारियत थी? क्या इस खित्ते के अंदर अमेरिका के आने से पहले ये अनारकी थी? क्या ये नाअमनी थी? और पूरी दुनिया में ये उसने कास्त्रो ने कहा था, उसने कहा था कि अमेरिका में अमन की बुनियादी वजह यह है कि अमरीका में अमरीकी सफारतखाना नहीं।
सही।
जहां अमरीकी होंगे वहां वो बदअमनी पैदा करेंगे। ये उनका तरीका है, ये जदीद इस्तेसाली कुवतों का, इस्तेमारी कुवतों का तरीका है कि वहां बदअमनी पैदा करके उनके अवाम को लड़ाकर उनको दुरुस्त हदफ से भी दूर किया जाए और उनके वसाइल का इस्तेसाल भी किया जाए। ये इस खित्ते के वसाइल का इस्तेसाल करना चाहते थे। आज तक उन्होंने इस्तेसाल भी हमारा किया है और सवाल भी हमारे ऊपर रखा है, वार टेररिज्म के नाम पे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पे और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लिबरलिज्म के नाम पे। अब ईरान ने सवाल का होराइजन बदलकर ये सवाल उनके ऊपर खड़ा कर दिया और कहा अब आपको अपना जवाब देना होगा। क्या आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं? आप अपने यहाँ एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? और वेस्ट ये साबित करे कि क्यों वेस्ट के पास मसलन वेपन्स रखने का हक है और क्यों दुनिया की दीगर कंट्रीज को हक नहीं है, और क्यों मसलन ये जो पूरी दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि यहाँ अलकायदा आ गई है और उसके बाद फिर वो पूरी ताकत के साथ बल, क्या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान और इराक की अगर हम बात करेंगे जहां उन्होंने अस्करी हमला किया है, दहशतगर्दी के तमाम तरह हमलों में जिसको बुनियाद बनाकर ये लोग वहां पर आए हैं, उस तमाम अफराद को जमा किया जाए तो मुमकिन है किसी एक मंतके के अंदर अमेरिका की तरफ से बमबारी के नतीजे में मारे जाने वाले अफगानियों या इराकियों से वो तादाद कम बनती हो। किसी एक मंतके कम अज कम 5 से 6 लाख के दरमियान इराकी मारे गए, पूरी वारंट टेररिस्ट के दरमियान इतने नहीं मारे गए। तो इस वक्त ये जवाब वेस्ट को देना होगा। ईरान ने सफ़े को पलट दिया है और अब उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि आप जवाब दें कि आप टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। और ये उस नफसियाती जंग का कामयाब नतीजा है कि जो ईरान ने इस डिप्लोमेसी के जरिए लिया है।
शिराज साहब, ये रेबर के आपने पैगाम का हवाला दिया, उसमें उन्होंने मगरबी दुनिया के बारे में ये फरमाया कि इन्होंने दहशतगर्दी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और इस जंग की शुरुआत भी अलकायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ जो वॉर थी वही इसका स्लोगन था। तो अभी अगर हम देखें तो अक्वामे मुत्तहिदा ने उन्हें सियासी तौर पर तस्लीम करने का इंदिया दिया है तालिबान को, तो इस तजाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखें, वेस्ट के जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मेयारात हैं, ये तो पूरी दुनिया के सामने आ गए। आप जानते हैं इराक में MKK
जी
के कैंप्स, कैंप अशरफ के नाम से थे, पूरी दुनिया ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि अभी अमेरिका ने उनको टेररिस्ट की लिस्ट से खारिज कर दिया और यूरोप ने उनको टेररिस्ट की लिस्ट से खारिज कर दिया, जबकि उनके दामन पर हज़ारों मजलूम ईरानियों का खून। एक बार फिर आप देखते हैं कि यही तालिबान के जिनको इन्होंने सपोर्ट किया, जिनको इन्होंने फैसिलिटेट किया शुरू में, फिर उनके नाम पर ये एक जंग मुसल्लत करके भी आ गए और कहा कि तालिबान जो है वो दहशतगर्द हैं। आज उन्हीं तालिबान को पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करने के लिए ये उनका नाम भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से हटा रहे हैं। तो डुअल स्टैंडर्ड्स तो कोई इंतहा नहीं है उसकी, वो आपको हर जगह नज़र आएंगे और उनके हर अमल में नजर आएंगे, क्योंकि वो अपने मफादात के हसूल के लिए इसको कोई शर्मिंदगी की बात तसव्वुर नहीं करते।
सही।
ये एक तो वेस्ट का एटीट्यूड है और ये रूटीन है, वेस्ट ऐसे ही करता रहे। दूसरी बात ये है कि जो अलकायदा और तालिबान की बात है, इसमें मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ, पहले भी हमारे एक प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है कि अलकायदा या ये सारा रिलीजियस जो फंडामेंटल एलिमेंट है, बुनियादी तौर पे इन्हीं की बाई प्रोडक्ट थी। और क्यों थी? तीन आदाब के लिए थी। नंबर एक, इस्लाम का इमेज तबाह करना, गलों को काट के, दूसरों को गैर मुस्लिम करार दे के, दूसरों को तहजीब का शिकार करके, उनकी इज्जत और हुरमत को पामाल करके, इस्लाम का एक ऐसा चेहरा जो जबर बर्बरियत और जुल्म से भरा हो, ये पेश करना वेस्ट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ताकि इस्लाम की बढ़ोतरी को रोका जा सके। ये एक हदफ था। दूसरा हदफ वो ये था कि तमाम उन कंट्रीज के अंदर के जहां वेस्ट चाहता है हमला करे, उसे हमले के लिए जवाब प्रोवाइड करना। ये अलकायदा एंड तालिबान इन दोनों ने मिलकर प्रोवाइड किया, इराक के अंदर भी किया और अफगानिस्तान के अंदर भी किया। और जहां उन्होंने हमला किया, फिर उस हमले को दवाम रखने में, उस ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू करने में, जैसा इराक के अंदर हुआ कि पोलिटिकल प्रोसेस में जब पोलिटिकल पावर्स ने कहा कि आप जाएं, आपका रोल खत्म हो गया, उस वक्त इंसर्जेंसी शुरू हो गई, इनके कहने पर इंसर्जेंसी शुरू हो गई और बावर ये कराया जाने लगा कि आप तो कैपेबल नहीं है इस इंसर्जेंसी को रोकने के, लिहाजा हम आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। यानी उसको कंटिन्यू करने में भी इन्हीं ताकतों ने रोल प्ले किया। और जो तीसरा रोल इन लोगों ने प्ले किया वो ये था कि दरअसल अमरीका को मौका दिया कि वो मुसलमानों के ममालक पर जुल्म सतम की दास्तानी रकम करें और डीमोरलाइज करें मुसलमान कंट्रीज को। ये तीन आदात थे जो उन्होंने हासिल किए इनके ज़रिए। और अब जब एक मरला ख़त्म हो गया और एक स्टेप ख़त्म हो गया, तो ये टिश्यू पेपर यूज़ हैं, उसके बाद इनकी कोई अहमियत उनकी निगाह में नहीं।
सही।
और पहले मैंने कहा कि डुअल स्टैंडर्ड भी उनके लिए बड़ी बात नहीं है। अलबत्ता मैं इराक के अफगानिस्तान के बारे में ये पॉइंट ज़रा क्लियर कर दूँ। अफगानिस्तान में जो अभी जंग है, इस जंग में एक छोटे से ग्रोह जिसे अब तालिबान कहते हैं के अलावा, हकीकतन वहाँ की आवाम है जो जंग लड़ रहे हैं। और चूंकि इन्होंने तालिबान का फिनामना इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, जिसकी वजह से ये बावर किया जाता है कि अगर वो हिकमतियार जंग लड़ रहा है तो वो भी तालिबान है, अगर अब्दुल वो सयाफ जंग लड़ रहा है तो वो भी तालिबान है, अगर कोई और ग्रोह लड़ रहा है, क्योंकि अफगान बागैरत हैं और अफगान इस कब्जे को और उसके नतीजे में जो जुल्म सतम इन्होंने रवा रखे हैं, वो उसको नहीं बर्दाश्त करते।
उनकी तारीख
वो तारीख है, उन्होंने रेजिस्ट किया है बरतानिया के साथ, किया है अभी यहाँ रेजिस्ट किया है, हाँ, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो वो जो हकीकी जेन्युइन रेजिस्टिंग पावर्स हैं, इन्होंने उनको भी मुश्तबा बनाने के लिए तालिबान का नाम दे दिया और कहा कि ये भी तालिबान ही है, हर वो जो अमरीकियों पर हमला करे वो तालिबान करार दे दिया। हालांकि वो ऐसा नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, और ये बड़ा फर्क आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। पाकिस्तान के अंदर वाकई तालिबान है, क्यों, ये किस पे हमला कर रहे हैं? पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन अमरीकियों पर हमले नहीं करेंगे, अमरीकी मफादात को कभी भी रोकेंगे नहीं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर आप देख लें कि उन्होंने मेनली जिसको टारगेट बनाया है वो अमरीका के साथ एसोसिएट पावर्स को बनाया है, या वेस्ट को बनाया है, या उनके उनसे रिलेटेड को बनाया है, सिविलियंस को नहीं बनाया, आम लोगों को, मार्केट्स को, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, मज़ारात को हमले का शिकार नहीं किया। बहुत माइनर कोई एक छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर, क्यों, वहां जेन्युइन रेजिस्टेंस है और यहां अमरीकियों ने रेजिस्टेंस पैदा की है ताकि स्टेट को कमजोर किया जा सके, और उन करने वालों ने दरअसल पूरे माशरे को डिस्टेबलाइज किया, और उसके पीछे अमरीका, इंडिया और बाकी दीगर कंट्रीज जो है वो यकीनी तौर पर है। तो इस फिनामने को समझने के बाद मैं ये कहूँगा कि आइंदा के लिए यकीनन पोलिटिकल प्रोसेस में मकामी अफगानों को शामिल होना चाहिए, और तालिबान को जो बहुत छोटा अंसर है, बहुत छोटा अंसर है, अफगानिस्तान की आबादी में वो 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है इस वक्त जो तालिबान है, वो वाकता अफगान की सोसाइटी के अंदर से इलाहदा हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के तमाम लोगों को इसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए, और जो असल तालिबान है जो इस वक्त फाल हैं वो पाकिस्तान के अंदर फाल हैं, और इनका उनको अपनी लिस्ट से निकालना दरअसल इन तालिबात के लिए रसद का, इन तालिबान के लिए फैसिलिटेशन का रास्ता खोलने के मुतरादफ है, और सीधा सीधा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। इस पे पाकिस्तानी स्टेट को भी एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तानी इदारों को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए।
इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत क्या सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है, या वाकई पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली ईरान के साथ अलायंस की तरफ बढ़ रहा है?
देखिए, स्ट्रेटजिकल अलायंस कहना ज़रा बड़ी बात है।
सही।
और दूर की बात, इट टेक्स टाइम स्ट्रेटजिस्ट डेवलप होने में, और लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो हैं ये मैच्योर होने में टाइम लेते हैं।
लेकिन क्या
सवाल ये है कि क्या इनका जाना, मैं ये अर्ज करूँ कि जिन जिन पावर्स ने इनको रोकने की कोशिश की है, इनका जाना कोई छोटा स्टेप नहीं है,
नहीं है
ये खुद एक बड़ा स्टेप है
हमारा माजी।
और हाँ, आप अभी अगर आप कहें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि ईरानी वजीर खारजा का कम अज़ कम 5 मरतबा, 4 से 5 मरतबा चंद महीनों के अंदर विजिट जो है वो उसको डेफर किया गया है। उन्होंने आना था और वो भी रहमान मलिक की इन्विटेशन पे आना था, लेकिन 4 से 5 मरतबा उसको डेफर किया गया। और आप जानते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया था ब्लड फ्लड के मसले पर, और उन्होंने चाहा था कि खुद देखें और कुमक करें, लेकिन पाकिस्तान ने सिक्योरिटी रीज़न को बुनियाद बना के वो परमिशन नहीं दी थी। दरअसल क्या है, दरअसल वो प्रेशर है वेस्ट का और इसका अरब कंट्रीज़ का। लेकिन इस बार बिलाखर कम अज़ कम उस शहर से तो निकलें,
बिल्कुल
उस प्रेशर से तो निकले हैं और गए हैं। ये एक स्टेप है, इसे भी छोटा स्टेप नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये कहना कबल इस वक्त है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कोई बड़ा डिसीजन कर चुका है, अलबत्ता नीड बेस्ड डिसीजन ये होते रहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी की जिस क्राइसिस में मुब्तला है, और जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं बिलखसूस ईरान से, इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे को साथ देना ये लाजम मलजूम है। और मेरा ख्याल है इस लिहाज से पाकिस्तान एक नेगलिजेंस का शिकार रहा है, पहले अपनी उस नेगलिजेंस को अभी उसने दूर किया है, और इन द लॉन्ग टर्म इसके बड़े अच्छे असरात होंगे। अगर 2014 वाला ये एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन अमलन अगर हो जाता है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के ओवरऑल सोसाइटी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, हर एक के लिए ये प्रोजेक्ट करीदी प्रोजेक्ट होगा। और यकीनन अगर ये इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और ये कंट्रीज़ अपने मामलात को खुद हल करने की तरफ आएंगी, तो वो पावर्स के जो वैक्यूम को देखकर वहाँ महफूज करती हैं, या जो अपने ताकत और कुदरत की बुनियाद पर इनका इस्तेसाल करती हैं, उनके लिए गुंजाइश कम से कम होती जाएगी। अलबत्ता हमें दुआ भी करनी चाहिए और इसमें रोल भी प्ले करना चाहिए, जो हमें कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ा नेगेटिव नज़र आया है। जब ये फैसला इन्होंने किया है तो नून ने एक स्टेटमेंट जारी की है, ज़ाहिर नवाज शरीफ की थी या शहबाज शरीफ, इन दो में से किसी एक भाई की थी, जिसने कहा कि जो हमारे आजमूदा फ्रेंड्स हैं वो फकत चीन और सऊदी अरब हैं। यानी उन्होंने कितनी बड़ी निकली वो उसका मनफी उनका अंदाज है। दुनिया में पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया वो इस्लामी जमहूरी ईरान, और पाकिस्तान ने दो जंगें जो लड़ी हैं, इन दोनों जंगों में जिस मुल्क ने पाकिस्तान को बेतहाशा सपोर्ट किया है वो इस्लामी जमहूरी ईरान है। और आज अगर पाकिस्तान का खुद एटमी प्रोग्राम जो जिसके ऊपर सवालात भी खड़े हुए हुए हैं, अगर उतने प्रेशर का शिकार नहीं है, तो वो इस वजह से है कि अभी ईरान एक बड़ी ढाल की सूरत में दुनिया के सामने खड़ा है, अपने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद पर ही सही, लेकिन चूंकि वो स्टैंड ले रहा है इसलिए पाकिस्तान को एक शेल्टर मिला हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये बड़ा ही नेचुरल अलायंस है जो होना चाहिए, जो अब तक निगलेक्ट रहा है। तवक्को रखी जानी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस तरह के कोई अहम डिसीजंस करेगा और पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ करीबी तलुकात रखेगा, और इम्पोज्ड गवर्नमेंट के ज़रिए, जो पहले हमने एक गलत तजर्बा किया अफगानिस्तान के अंदर, इलाकों के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा।
श्रेयस सर, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।